કયો બરોબર પેલા ખીરસવાળા અમને દેખે એ તો ક્ષીર સાગરિયા આ ગયા યહાં પર ઉસકે બાદ વો બડે બડે ભારી ભારી હાથી સે બઢકર ઊંચે ઝૂમતે હુએ હાથી શરીખે બૈલ વો ઠકડો ખીંચતે હુએ ઓર તમામ તંબુઓ કે દ્વારો પર આ કરકે ખડે હોને લગે પ્રબંધક લોગ અબ સબ વ્યવસ્થા હૈ ના કૌન તંબુ મેં કૌન ઠહરેગા યે બાત નહીં કે વ્યવસ્થા કે સબ ગડબડી હો જાય વહાં પર અરે ભગવાન કી લીલા શક્તિ સ્વયં વહાં પર વ્યવસ્થા કરને મેં લગી હૈ ઇન ગોપો કે રૂપ મેં સબ વ્યવસ્થિત તો સબ શિવરો કે દરવાજો પર આ કરકે છકડે ખડે હો ગયે બૈરો કો ખોલ કરકે અલગ કમરિયા જાને લગા તો પહેલે બૂઢી લુગાયો કો ઉતારા ये बुढ़िया बुढ़िया माई जो है ये कहीं गिर जाए खा जाए तो बुढ़िया मैयाओं को पहले उतारा उसके बाद तरुणियां उतरी फिर खेलती हुई और नाचती हुई कुमारिकाएं सब ये उतरी और विश्राम करना केवल चार ही पर बोले भाई सब चीज मत उतारना जो जो रात को आवश्यक हो उतनी सामान उतारना तो तमाम लोग लग गए उतारने में आवश्यकता अनुसार और जो बैलों के गायों के रक्षक थे ये गाड़ीवान सब द्वारे ये अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास जल अन्न इत्यादि ये लाने में सब व्यस्त हो गए और दुकानदारों ने समझा कि इस मेले में तो आज काम बन बनेगा तो अपने अपने हाथ लगा ली दुकान खोल ली और क्रय विक्रय आरंभ हो गया दासियां गई बाजार में सामान लाने को गोप सुंदरियां घर बसाने में लग गई अब घर बसाना है ना रात भर बैठना है और कहीं यहां रसोई बनावेंगे यहां सोएंगे वो रसोई का स्थान और ये सेनागार ये सब सारी सुव्यवस्था होने लगी। अब भगवान सूर्यदेव ये सूर्यदेव ने देखा काम हो जाने तो फिर कहीं अस्त होना है तो लोगों ने देखा समय पर ही अस्त हुए पर समय समय का सूर्यदेव को आज भार नहीं आज सूर्यदेव सेवा में लगे बोले कहीं रात पड़ गई यहां पर तो ठीक नहीं तो सूर्यदेव मनो वो पश्चिम दिख सुंदरी के भवन में निवास करने के लिए मनो चले। इस प्रकार अब फिर ये इतने में पीछे वाले सब आ गए तो ये लोग पीछे थे ये पांचों भैया जो हैं नंद उपनंद अभिनंद सन्नंद और नंदन ये पांच भाई रहे बीच के थे ये नंद तो पांचों भाई और बूढ़े बड़े जो गोप उनके साथ थे वे तो पहले ही आ गए थे सब व्यवस्था कर रही हो ना ये सब आ गए तो ये प्रबंधकों को ऐसी आशा नहीं थी कितनी जल्दी आ जाएंगे ये पर भगवान की लीला शक्ति तो सारा जन समुदाय सारे चकड़े और सारी गायें वहां पर वो रचना होने के होते होते सब पहुंच गया पार भीड़। अब यशोदा रानी जो है उनका रथ आया तो वो अब बड़े अब वो नीलमणि जो है वो तो बस उतरने के लिए उतावले हो रहे बोले जल्दी भैया कब ठहरेगा कितनी देर होगी ठहरता नहीं और सब देखो सब खड़े हैं रथ और ये चलती जा रहा है। अरे बोले उनका तुम अभी दूर होना बेटा तुम्हारा रथ अभी पीछे है वहां पहुंचेगा तो अपने ठहरेगा बोले क्या पहुंचेगा ये तो सब ठहर गए सब उतर रहे और हम लोग रही गए। हंसने लगी ये रानी कितनी बार बोले रोको नहीं तो नहीं बढ़ेंगे आगे। तो मैया ने कहा अच्छा भाई रोक दो उतरना तो है नहीं पर वो न रोके तो हटे हट पकड़ ले रोक दिया अब चले आगे बोले उतरे बोले नहीं जो आगे उतरना थोड़ा सा आगे और फिर आगे बोले अब उतरेंगे। इस प्रकार बार बार मैया शरद को रुकवाऊ अब बोले मैया देखो हमको तो भूख लग गई अब उतरने का कोई बहाना करें बोले मैया तुम तो ये रथ तो रुकता नहीं हो सब तो पहुंच गए हमें लग गई भूख अब मैया हम तो खाएंगे अब रोको बिना खाएं हम तो आगे नहीं बढ़ते। अब मैया बिचारी क्या करे कहा भाई रोको रथ को सब सिपाही इकट्ठे हो गए अच्छा रोको तो वही एक सुंदर तालाब था बन गया तालाब बड़ा सुंदर कमल खिले हुए उसमें पद्म पत्रों उनका वहां चयन कर लिया वो पत्ते ले लिए सब और वृक्षों की छाया में बैठ करके और पत्तों पर भोजन परस दिया गया मिष्टान्न और इन्होंने खाया। बोले अब चलें, बोले अब जल्दी करना नहीं फिर भूख लग जाएगी। तो इस प्रकार वो चल रहे हैं, कभी फूल देखा तो बोले भैया ये फूल तो मिलेंगे, ये तो नया फूल है। अरे कहे भैया वहां सब मंगवा दो, वहां मंगवा दोगे नहीं, हम तो अभी यहीं लेंगे, अभी लेके रहेंगे, अब क्या करें, फिर गाड़ी रोके फिर फूल दे। इस प्रकार वे चलते चलते जा रहे हैं, कभी फूल और कभी रस, कभी कोई कभी रस रोकते हैं और कभी हाथ बोलिए फूल दो तोड़ में, अरे दूर है दादा दूर नहीं हाथ पहुंचेगा, वो रोक दे रहा तू पहुंचेगा तो क्या है। इस प्रकार से तो मैया अपना हाथ बढ़ाकर तोड़ देती, बोले ले लाला हम तुम्हें तोड़ देती हूँ। अब इस प्रकार से जब फूल इकट्ठे हो गए तो बगल से कोई बगल में झगड़ा जा रहा था, उस पर फूल बसाने लगे, बोलते हम तुम पर फूल बरसाते हैं। इस प्रकार ये आनंद करते हुए और ये जा रहे, संध्या होने को आई। अब सबके सब पक्षी जो हैं अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं, उड़ करके मोर इत्यादि ये उनकी शाखाओं पर जा करके बैठ गए हैं, और ये हरिणों के दल सब मंडल बांधे हुए और मुंड मुंड अपनी पाबूर कर रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए। और इस प्रकार से सारी प्रकृति मानो खिल उठी, और इधर तमाम तंबुओं के अंदर दीपक जला दिए गए और दीपों की ज्योति तमाम फैल गई। पहरेदार सब आ गए, इतने में ये इनका रथ भी वहां पर आ पहुंचा। तो रथ आया, तो बोले ये पहले कूद पड़े, बोले भाई भैया बहुत देर से आया, तुमने बहुत देर लगा दी रास्ते में। अरे बोले हमने लगा दी कि तुमने लगा दी, तुम बोले यहाँ बोले कलेवा करेंगे, यहाँ बोले फूल तोड़ेंगे, यहाँ बोले फल लेंगे, ये गाछ दिखाओ हम गाछ को छुएंगे, देख तुमने लगाई। बोले मैया तो ये सब तुम्हें ने लगाई, चलो अब जल्द तो उतर पड़े पहले। अब दास दासियां तमाम इकट्ठी वहां पर थी तो उतार लिया। पहले ये दोनों उतरे, बोले कौन सा घर है हमारा। अब घर बता दिया, बोले ये आपके लिए है, घुस गए। और ये दोनों अब दोनों मैया उतरे। अब मैया की और कोई चिंता नहीं, जल्दी से जादू करावे लाला को। तो वो अंदर जा करके और जादू कराने लगी। उधर वो पहले से आई गए थे, गाय आ गई तो गाय सब दूर जाने लगी। अब हजारों गाय एक साथ शब्द हुआ, वो घर 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 शब्द तमाम, वो जैसे कोई समुद्र मथ रहा है, समुद्र मंथन जैसे हुआ था ना, उसी प्रकार यहाँ ये लाखों गायों का दूध एक साथ दुहा गया। तो इस प्रकार से दूध दुहा जाने लगा, और वो दूध जो है पड़ता है नहीं, तो तमाम इकट्ठा हो करके वो उस पात्र में बर्तन में जिसमें गगरे में वो दूध किए, बड़े बड़े गगरों में दूध थे, कोई थोड़ा सा गिलास थोड़े कि पाव भर दूध देने वाले गैया हो, मनो दूध देने वाली गैया, और वो सब बलवान बलवान सब दूहने वाले। तो वो जब अंदर जाए तो बड़ी सुंदर ध्वनि है उसमें, वो हिले ना दूध चक्कर काटे। तो ये सब बड़े राजू बोली तुम, ये तो आज नया बाजा बज रहा है। भूयान दोह रव पयोज मथन ध्वाना कृत दोहनी गर्भ भ्रांत गभीर मुग्ध मधुर कृष्ण से रस्यो भवत। बड़ा आनंद इनको ये। अब जब दूध दूह लिया गया, अब वो बोले मैया अब तो नींद आ रही है। अब श्याम सुंदर के आंखों में नींद आने लगी, नींद छाने लगी। अब मैया देखती है कि भाई कि दूध आ जाए, ये गायों का पदम गंधाओं का थोड़ा दूध गर्म करके इनको पिला दें तब सोए। बोले नहीं मैया अब तो सोएंगे। तो मैया नई नई बात सुनाती, दूध पिलाना है ना, तो ये गायें बड़ी प्यारी रही, गाँव के नाम रख छोड़े थे, ये धवली और ये नवली और ये सबली और ये न मालूम क्या क्या नाम। तो बोली बोली मैया कह रही मई देख बेटा, वो देख वो तेरी धवली को लेके आ रहा है, वो धवली आ रहा है, धवली को लेके आ रहा है, और सबली तो बोले सबली को दूहेगा। जब तक शबरी को दूर है तब तक तो ठहर। तो पुकारने लगे, अरे शबरी जल्दी आ, शबरी जल्दी आ जा, धवली आ जा। तो महाराज जहां पुकार सुनी कि वो गाय भीड़ में से निकलकर हम्बा हम्बा करते हुए दौड़ी आ गई, शबली धवली पास आ गई। तो मैया बोली, देख तू तो सो रहा है, ये गाय तेरे पास आ रही है, इतनी जल्दी सो जाएगा? निदेख तेरे आकर के खड़ी हो गई पास, और ये देख ग्वाले जो है ये तेरी गायों पर हाथ फेर रहे हैं और इनके अंग सहला रहे हैं, देखना तेरी ये शबली गाय कितनी सुंदर है, तो देख तो देखिए कैसी धवली अच्छी लगती है। नाम ग्राहम कृत वचनया गोदवाय हुयमाना हम्बा रावई पतिरव करी धाविता देन वृंदात अभ्यायाता निकटम सकृत प्राणिना मृष्ट गात्री काचित पदम रुचरा नई चकी दृश्यते स्म। इस प्रकार गोदोहन काल का दृश्य सामने रख रख के मैया श्याम सुंदर को अपने कन्हैया को जगाए रखने का प्रयास करती हैं, पर ये अभी तो नींद इनको आने लगी थी, खाते खाते जो चबाया हुआ ग्रास मुंह में अभी आधा है वो निकल नहीं पाए, और आधा ग्रास मुंह में अध चर्बित और मैया की गोद में लुढ़क पड़े, नींद आ गई, धन्य हो गई नींद। और यही स्थिति आज बलराम जी की है। तो अब मैया ने देखा कि अब तो बच्चों को नींद आने लगी, शुद्ध ये दिन भर गाड़े पर न रहना छकरे पर तो थक गए बैठे बैठे, तब सोना ठीक है। तो मैया ने जल ले करके उन दोनों के मुंह पूछ दिया, अब अपने आप कौन पूछे वहां पर, मुंह पूछ दिए और फिर दोनों को उठा के धीरे से, और जो शयनागार था सोने का तंबू उसने सुंदर बिछौना बिछा था वहां ले जाकर दोनों को सुला दिया। इतने में ही गोपों को साथ लिए हुए नंद बाबा उपनंद आदि नंदन सनंद ये सब आकर के पहुंचे, मैया ने सबको बैठा के भोजन करवाया और फिर थोड़ा सा स्वयं भी खाया। वहां तो वही काम, फिर पहुंच गई श्याम सुंदर नीलमणि के पास। तो प्रत्येक ब्रजवासी जितने वहां पर थे सबके तंबू, सबके खान खाने की पीने की सोने की सारी व्यवस्था शिविरों में पूरी पूरी, और सबके सब सो गए, कुछ शंका भय तो है ही नहीं। अब तक तमाम जो पहरेदार हैं वो पहरा दे रहे हैं और सब वो बड़े जोर जोर से ध्वनि कर रहे हैं भगवान राम श्याम के नाम की, और उधर वो देवी कालिंदी जी आज आनंद में उन्मत्त होकर के नाच रही है और गा रही कलकल शब्द, उनका आज विचित्र संगीत माधुरी को प्रकट कर रहा है। आज श्याम सुंदर हमारे में उतरेंगे, आज श्याम सुंदर का कहीं चरण स्पर्श हो गया तो मैं निहाल हो जाऊंगी। कालिंदी जी के मन में आज बड़ा उत्साह है और वो मानो आज गान में लग गई, बड़ा सुंदर गान हो रहा है, और ये शरद हेमंत की ये संधि है ना, तो चंद्रमा की ज्योत्सना तमाम फैल रही है। आधी रात बीती, तीसरा पहर आया, अब सारी ब्रजगोपियां जाग उठी और सब ने अपने अपने कपड़े बदले, वेशभूषा धारण किया, फिर बाहर आ गईं। तमाम आंगन जो थे उनमें दीप जल रहे हैं, ज्योति उद्भाषित हो रही है। अब यहाँ सब पूजा करने वाली थी नारायण की उपासना, तो नारायण की पूजा के लिए सब फूल फूल लेकर के पूजा कर ली। अब ये रोज का काम थी इनका दही मथना, रात को तो तमाम दही दुहने का शब्द हुआ था, और ये तड़के ही रात रहते ही अब मंथन क्रिया शुरू हो गई, बिलोना। तुम्हारा एक तरफ से वो हजारों हजारों मटके एक दो थोड़े ही तमाम तंबुओं में चलने लगा वो बिलोने का काम, और उसके साथ साथ एक तो वो मंथन ध्वनि, फिर इनके जो हाथों में बड़े सुंदर सुंदर कड़े, ये मंजीर, ये सब जिनमें करधनिया, ये तो बड़ी बड़ी मटकियां थी ना, ऐसी थोड़ी कि ये बैठ करके जरा सा एक पाव भरी दही बिलो लिया, तमाम शरीर ना छुटता, तो सब ये झंकार करने लगे। अब ये एक तो ये मानो मंथन नगरीय बन गई, तमाम तमाम नगर में मंथन कार्य बिलोने का काम होने लगा। तो एक तो ये मंथन नगरीय में मंथन गगरी, इन मंथन गगरियों के अंदर होने वाला एक बड़ा सुंदर गभीर नाद, और इसके बाद इन्होंने अब इनके साथ एक चीज और थी ना, ये गायन चमृद्धि सुरकंठ, हरेक काम में श्याम सुंदर के गुण गाना इनके जीभ का स्वभाव हो गया। ये नहीं कि इतने नाम तुमको लेने पड़ेंगे, आज नियम कर लिया वो लाख नाम लेंगे, अरे नियम कर लिया, नौवा घड़ी देखते हैं देर हो गई, यहां ये साधन वाधन नहीं है। यहां तो दिन रात जीभ मानती नहीं श्याम सुंदर का गुण गाए बिना, वही बाल लीला तमाम इनके, इन्होंने गीत जोड़ लिए तमाम वही गीत। एक तरफ तो बाजा बजने लगा मंथन का, दूसरी ओर इनके गहनों का झनकार होने लगा, और बाजे के ताल ताल में और ये बड़ा सुंदर गान करने लगी। चारों तरफ ये माधुर्य लालित्य फैल गया, बड़ी सुंदर ध्वनि। प्रातः काल का समय, अभी तक सूर्य उदय हुआ नहीं, और तमाम ये विश्राम नगरी में ये आनंद कोलाहल हो गया। अब ये महाराज कुछ विचित्र थी श्याम सुंदर का मंगल गान, और गाने वाली श्याम सुंदर की तमाम स्नेह हृदया गोपांगनाएं। एक फरमाइशी गान होता है, एक दिखावटी गान होता है पैसे के लिए, एक दूसरे के मनों को विकारग्रस्त करने वाला गान होता है, और एक मंगलमय आनंदमय भगवान की आनंद ध्वनि होती है। सूर्योदय से पूर्व का पवित्र उषा काल, और गाने वाली सबके सब पवित्र प्रेम से भरी हुई गोपांगनाएं, और गाने की चीज भगवान की मधुर लीला, और उनके साथ बाजे ये उन श्री गोपांगनाओं के आभूषणों की झनकार। तो इतनी मधुर हुई ये कि इनका इनका जो वो गान की ध्वनि थी वो पहुंच गई स्वर्ग तक। अब तमाम जो दिव्यांगनाएं दिगंगनाएं थी दिशाएं सब ये सब भर गईं, और विमानों पर स्वर्ग आदि में विमानों पर जो सुर सुंदरियां सो रही थी उनके कानों में प्रवेश हुई ये संगीत ध्वनि। ये अतुलनीय लीला श्रवण सुख, तो इस सुख की तुलना में वो देव स्पर्श सुख जो था वो तुच्छ हो गया। मालूम हुआ कि ये तो विषय है इसके सामने, और यही होता है भला, भगवत रस आने पर विषय रस विषवत प्रतीत होता है, ये कसौटी है। जिसको भगवत रस के साथ साथ विषयों में रस आता हो उसको भगवत रस मिला नहीं, किसी विषय रस को ही उसने भगवत रस मान लिया है। भगवान का रस प्राप्त होने पर भोग रस विषवत प्रतीत होता है, जहर सा मालूम होता है, हलाहल के समान मालूम होता है। तो वे तमाम जो देवियां थी सुर देवियां देवलोक की, वो जाग जाग करके उठ बैठी संगीत ध्वनि आते ही, और वे उनका मन अनन्य भाव से लग गया इन गोप सुंदरियों के ये सुधा प्रवाह बहाने वाले मंगल गान में। वो सुन सुन करके आनंद रस में निमग्न होने लगी, और उनकी उनके मन की सारी वृत्तियां देव 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 सुंदरियों के मन की सारी वृत्तियां ये ब्रज शिविर से आने वाली जो मंगलमयी संगीत ध्वनि थी इसमें विलीन हो गई। तो भगवत बाल कृष्ण गुण गण गान कर्व कर्ण रम्यम युगपद विधीयमानस्य दधिमथनस्य मणिमय मंजु मंजीर वलयाद विविध भूषण सिंजित सहचरेण गरगरी कुहर विहर मान मसृण तर गभीर निदेन गान कलरव मधुरिम सर सतयाशीत अतिशय सुललितेन जगद मंगल समूर निर्मूली कर्णकुशलेन दिगंगना गणकृतानुध्वनन विरचित परिपोषेण तत्क्षण ममरांगनापि पतशयन जुगुप्सया त्वरितमेव जागति नाम एकांत भावेन तमेव घोष निर्घोष माकर्णयंती नाम श्रवणानंदो जायते स्म। सुर सुंदरिया इस संगीत ध्वनि में अपने मन को अनन्य भाव से लगाने को बाध्य हो गई। ये उस संगीत की महत्ता जो संगीत देवों के देवभोग को भी विस्मित करा देता है। जिस भगवान के मंगल गान की ध्वनि देव सुलभ जो भोग हैं उनमें विषबुद्धि पैदा कर देती है वो कुछ विचित्र होती है और वो उन्हीं के हृदय से निकलती है जिनके हृदय में भगवत रस भरा होता है। जो चीज जहां होती वहीं होती है ना, ये किसी गायक के गाय में नहीं आ सकती, सूरदास के गाय में आ सकती है वो गायक भी और कवि भी, हर एक गायक नहीं गा सकता इतना मधुर गान। अब गोप रमणियों का ये गान सुनकर यशोदा मैया भी जाग गए। यशोदा मैया का आज विपरीत भाव, सदा तो मैया पहले जागा करती और फिर भी और उसके बाद ये ब्रजसी मंथनियां ये दही मथनी में लगती और गान गाया करती, पर आज क्रम बदल गया, आज दूसरी चीज हो गई। आज मैया को तमाम वो अतीत की पहले की स्मृति होने लगी। वो जिस दिन से ये कोख से पैदा हुआ नीलमणि उस दिन से लेकर और ये कल जो वहां से विदा हुई बृहदवन से तब तक सारे दृश्य मैया के मन में उदित हो गए और मैया रात भर उन्हीं में उलझी रही। वो मैया का सोना क्या था, वो लीला सागर में डूब जाना था। मैया बस उस लीला सागर में डूब गई। अब जब इन गोप रामों का गोप रमणियों का जब गीत सुना तब ये उल्टा जागी, गीत सुन के जागी, सोचा कि ये सब गाने में लग गई ना, बात्सल्य उमड़ा, अब ये संभाल कौन करेगा इस श्याम सुंदर की, कहीं जाग गया हो तो मैया उठ बैठी झट से। और वो तमाम जो लीला सामने आ रही थी वो लीला मैं को देखने के लिए तिरोहित हो गई और मैया रसास्वादन करने के लिए इसका सावधान हो गई, उठी, कपड़े बदले और काम क्या, सवेरे कलेवा कराने की तैयारी और दूसरा कोई काम नहीं। तो पूजन, बोले पूजन तो आज रोहिणी मैया ने पहले उठ के कर लिया था, काम काज यशोदा सो रही है और थकी मांदी है और ये तो फिर लाला के काम में लगेगी तो पूजन पहले से कर लें। तो वास्तु पूजन देव पूजन इत्यादि तो रोहिणी ने उठ करके पहले ही कर लिया और दासियां तमाम दधि मंथन में लग गई थी। तो ये सब और लोग सब अपने अपने गाड़ों पर सामान लादने लगे। बजान स्वान स्वान समायुज गुड़ परिचला, जैसे वहां से लादने लगे थे वैसे यहां पर से प्रस्तुत होने लगे, क्योंकि सूरज के उदय होती तो आगे बढ़ना है ना, फिर दिन बीत जाए तो कैसे। उपनंद ने ये सबसे कहलवा दिया था, उपनंद नेता है इसके, उपनंद जी जो है ये पहले से ही शुरू से ही और ये नेता है, राज्य मंत्री है, बड़े भाई हैं, इनका आदेश चलता है। तो इन्होंने आदेश कर दिया था कि देखो भाई सवेरे जल्दी ही सूर्योदय होते ही सब यहां से चल देना, सब तैयार रहना गाड़ी वाड़ी लाद करके। तो ये उपनंद जी का ऑर्डर था तो सब के सब तमाम अपना अपना सामान लाने लगे, उतारा थोड़ा ही था ना। रात जब विश्राम की चीज से कुछ थाए वो सब तैयारी पहले से थी। अब तो साहब अब एक दूसरी चीज हुई, अब ब्रज सुंदरियां जो हैं वे सब के सब जब छकड़ों में बैठने लगी, बोले एक बार लारा को देख तो आऊं। सबके मन में यही कि एक बार लारा को देख ही आऊं। तो वो तमाम समूह गोपियों का बल के दल तमाम ये नंद नंदन का वो विध बदन मुखचंद्र देखने के लिए, बोले मैया कहेगी अरे क्यों क्यों इस समय तुम आ रही हो, ये अपने 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 गाड़ों पर सभा तो नहीं होती, यहाँ भीड़ लगा रखी। तो इन्होंने फिर अपने अपने बहाने बनाए, किसी ने कुछ कहा, बोले मैया हमारा कपड़ा कहीं आपकी गाड़ी में नहीं रहेगा, और तुम्हारे तुम्हारे घर हमारे घर में कैसे आता। अरे बोले तो देख ले मैया क्या हरज है, बोले हमारी दोहनी खो गई कहीं और मैया हमारी ओढ़नी का पता नहीं लगता। अब ये नए नए बहाने बना बना करके बस केवल उद्देश्य एक ही है, कृष्णचंद्र का मुखचंद्र देखना। तो आज ये श्याम सुंदर ब्राह्मण मुहूर्त में जाके चलना है ना, अब ये बैठे हंस रहे और बड़ी सुंदरियां उन्हें देख देख करके मुग्ध होती जा रही। अब नंद बाबा तो अपने काम में लगे थे, उनके इष्ट देव नारायण, वो तो नारायण की पूजा बिना दूसरा काम करते नहीं, और पूजा इसीलिए कि लाला का मंगल हो, और कोई पूजा का उद्देश्य नहीं है, लाला के मंगल के लिए इष्ट देव की पूजा में संलग्न ब्रजेश्वर। और ये तो नंदरानी ने कहा नहाए तो आए, तो लोगों ने कहा बोले कोई बात नहीं, और सब छकड़े चलते होंगे और आपका तो पीछे है ना, तो आप नहा ले। तो ये लाला को लेकर के साथ गोद लेकर के और जमुना जी नहाने चली। उस समय जमुना जी की क्या शोभा है इसको देखा भक्त कवि ने, जरा शोभा सुनिए आप गंगा जी की, जमुना जी की शोभा की अंतिम
अंतिम जुल जल प्रवाह अति जुल जल प्रवाह नोहर सुखावगाह मनो सुखावगाह विदित राजत अति करनि नंदिनी अति मंजुल जल प्रवाह अति मंजुल जल प्रवाह श्याम वरण धलकत रूप श्याम बरन झल कत रूप लोल लहर बरनूप श्याम बरन झल कत रूप लोल लहर सिरित संतत मनो सेवित संतत मनो वायु मंदिनी मंजुल जल प्रवाह अति मन कुमुद कुंज सेवन विकाय सु मंडित दिशिरी सुबास कुमुद कुंज बन विकास मंडित दिशिरी सुबास ये कुंजत अलिहंस को कुंजत अलिहंस को मधुर छंदिनी ये मधुर छंदिनी अति मंजुल जल प्रवाह अति प्रफुल्लित अरविंद पूंज कोकिल कल सार गूंज ये प्रफुल्लित अरविंद पूंज कोकिल कल सार गूंज गावत अली मंज पूंज गावत अली मंज पूंज विबुध बन अति मंजुल जल प्रवाह अति नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि धरात वास नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि हे धरत वास चाहत ये पुलिन बास ये सकल चाहत पुलिन बास सकल दुख निकंदिनी ये दुख निकंदिनी अति मंजुल जल प्रवाह अति मन मामुलेत कटत पाप ये मुनि किन्नर ऋषि कलाप नामुलेत कटत पाप ముని కిన్నర ఋషి కలాప కరత జాప పరమానంద ఏ మహా అనందిని కరత జాప పరమానంద మహా అనందిని అతి మంజుల జల ప్రభా మనోహర సుఖావగాహ అతి మంజుల జల ప్రభా
సౌందర్య కా ఔర్ సుఖ కా ఆజ్ పార్ నహీ హై. यमुना जी अत्यंत उल्लसित हैं और वे सेवा करने के लिए समुत्सुक हो रही हैं. जल्दी ही श्याम सुंदर की धेनु राशि यमुना को तैर कर पार करने वाली है. फिर श्याम सुंदर का शकट छकड़ा इसके ऊपर से जाने वाला है. उस समय यमुना जी जरा सा उमड़ेंगी श्याम सुंदर का चरण स्पर्श करने के लिए, पुल बनेगा. तो इस प्रकार से अब वो समीप आ गए तो पहले तो सोचा कि गायों को उतारें. तो गोपों ने, बड़े बड़े गोप सब रहे कला कुशल, उन्होंने धीरे धीरे गायों को उतारा और यमुना जी तो अनुकूल बनी गई. जिसमें गायों को सुख उतरने में हो सुविधा पूर्वक उतर सके तो गायें सब तैरने लगी. यमुना जी बार बार ही करने लगे, तमाम गोप उत्साहित करने लगे, चलो उतर अभी उतर जाओ. ही कार ध्वनि भिरल वल्लवी प्रेर्यमानम हम्बारावी रणुमति करा नित्यराणी कुर्वत फायद घोणम सुषित पवने रुन्नमत पूर्व कायम पार्श्व श्रुत सदस यमुनाम धेनुवृंदम कतार. गोप सब बार बार ही शब्द करते हुए उत्साहित करने लगे. गाय हम्बा हम्बा करती हुई सब मानो उनके आदेश को मानती हुई सी उत्तर देती हुई सी हम्बा उनका ही वह हम्बा हम्बा. वो जलराशि को चीरती हुई जा रही है और कहीं कहीं उनके नाक फूल जाते हैं. श्वास रोकते जाना पड़ता है ना, तैरना पड़ता है तो ये नासा फूल जाती हैं. शरीर के अंश ऊपर उठे हुए अंग कि धारा को पार करके उस पार पहुंच रही हैं. बछड़े फिर तैरने लगे. बछड़ों के लिए यमुना जी और नीति हो गई, कोई तकलीफ न हो. ऐसे बछड़े जिनके अभी सींग भी नहीं हुए, ऐसे बछड़े तमाम छोटा छोटा जिनका सिर, और ये बच्चे ही तो है ना, ये अब उछल कुदल के तैर रहे हैं. बच्चों को तो वहां जैसे ये बच्चे वैसे तो नाच नाच करके तमाम बछड़े पार उतर रहे हैं. और जैसे उनकी पूंछ ये जल में भीग भीग कर भारी हो गई तो पूछ वो चला नहीं पा रहे हैं. फिर भी कोई भय नहीं है क्योंकि माताएं सब आगे जा रही है ना तैरती हुई. मात दिखे तो बच्चे को भय नहीं. तो माताओं के पीछे पीछे श्रृंगा भाव बसा लघुन बलना नुल्लास यंत सुखम तोकत्वाद अपि वर्ष मनोति तरसा निर्लंघयंतो जलम पुच्छा नाम सरिला प्लुत गुरुतया नुल्लासने सुक्षमा క్షేమం వత్సతర పతేర్ రవిత స్వస్థ పశూర్ పూర్వత. అప్ని అప్ని మాతా కే పీచే పీచే తమాం బచ్చడే పార్ హో గయే. ఛోటే బచ్చే జో ఆజకాల్ కే పైదా హువే ఉన్కో తో గోపో నే అప్ని గోద్ మే లే లియా, ఉఠా లియా, కిసి కుండే మే బిఠా లియా ఔర్ వో తైర్ కే పార్ హో రహే హై. తో కోయి బాయే కంధే పర, కోయి దానే కంధే పర, కోయి గలే పర, కోయి అర్ కూద నా పడే ఇస్లియే पकड़ लिया उनको बछड़ों को. और ये बड़े तैरने वाले सब गोप खूब मजे में तैर रहे हैं. तो इस प्रकार सब गायें बछड़े उस पार होने लगे. बड़ी छटा सुंदर हो रही है उनके. और फिर वो तमाम बड़े बड़े बैल आए, वो सब तैरने लगे. ये बड़े बड़े बलवान बलवान सब, तो इनके वो थूरे जो थे क्या कहते हैं कुकुद, अब उनसे जो जल के प्रवाह की टक्कर लगती है तो जल उछलते हैं, जल उछलने लगता है क्योंकि वो तो आर सी आजादी भी तो जल उछलता है, तो वो मानो तरंगे जो हैं वो कुकुद का अभिषेक करती है इस प्रकार। और जो ये ऐसा भान होता है उन बैलों को मानो ये लहणी युद्ध करने आई है, तो वे क्रोध में भरकर ऐसी मुद्रा दिखाते हुए यूं टेढ़ी कर लेते हैं अपनी गर्दन को और सींगों से मानो लहरों पर प्रहार करने लगते हैं। इस प्रकार लहरों के बीचों बीच खेलते सिर उठाए और बड़ी जोर से दीर्घ श्वास लेते हुए क्षुब्ध हुए से किनारे जा खड़े होते हैं। पूर्णा भोगी तरंगान सुमहत ककुदे जर्जरी भावमाप्तान ग्रीवा भंगाभिरामं प्रकुपित मनसस्ताड़यन्तो विषाणैः स्रोतु वेगे पितुंगे त्वरित मृजुतरं पुंगवा पुंगवानां उन्मूर्धानोति दीर्घ श्वसित जलभरो धूत मंबक प्रतिरुहो। अब भगवान कृष्ण और बलराम अपने बहुत बड़े विशाल उस छकड़े पर सवार, बोले मैया हम तो खड़े खड़े देखेंगे, अब बैठेंगे नहीं, जमुना जी पास देखो ना कितना ये सब तैयार कर जा रहे हैं, हम खड़े रहेंगे बैठेंगे नहीं, तो अच्छा अच्छा भैया तुम खड़े रहो। तो मैया उन्हें दोनों ने हाथ पकड़ लिया, बोले हाथ छोड़ दो हम तो देखेंगे नहीं, ये क्या है क्या, हाथ उनको नचाने को चाहिए, तो हाथों को इस कर कमलों को नचा नचा कर रोहिणी मैया को और नवाब कभी ये दिखाते हैं कभी वो, देखो देख ये देख कैसी लहर उठ रही है, ये देख मैया ये देख ये क्या तमाशा हो रहा है। तो दोनों मैयाओं ने कमर पकड़ ली, उनके हाथ तो मानते नहीं उठाए हुए ही, और बोले मैया अब जो जैसा कूद पड़े यहां पर, मैया ने मैया फिर पकड़ लेती है, बार बार कूदने को उद्यत होते हैं, बोले जी कहीं मैया ने साथ धरे तो कूद ही पड़ते। और बोले मैया देख ये बछड़ा तैर रहा है जरा पूंछ पकड़ने इसकी करके। अब महाराज इनका वो आनंद रोल आनंद का कोलाहल, दोनों मैया कृतार्थ हो रही हैं और उधर एक ऊंचे टीले पर खड़े ब्रजराज नंद बाबा ये अपने सांवरे सलोने श्याम सुंदर की ओर देख देख करके आनंद मग्न हो रहे हैं। वो गांव की व्यवस्था भूल गए पाप जाती, वो तो व्यवस्था करने वाले करें, इनकी तो सारी वृत्ति सब वो से सिमट कर यही तो करना है, हमारी वृत्तियां जो नाना प्रकार के भोगों की ओर संसार की ओर बिखरी हुई हैं, इन सारी वृत्तियों को समेट कर भगवत चरणारविंद में लगाना है, यही तो असली काम है। तो भगवत चरणारविंद में वृत्ति लग जाने पर, भगवत चरणारविंद में चित्त हो जाने पर क्या करते हैं भगवान, ये उसका नमूना है। बच्चे बनकर गोद में बैठ जाते हैं, अज्ञानी बनकर अवश्य बनकर और छोटे से शिशु बनकर शिशु चित खेल खेलते हुए उनको सुख देते हैं, किस लिए कि उनकी सारी वृत्ति सब जगह से हटकर उस खेलने वाले खिलाड़ी छोटे से शिशु श्याम सुंदर में लग गई तो उनकी वृत्ति सिमटी रहती है। नंद बाबा की वृत्ति, यशोदा मैया की वृत्ति, ब्रज के गोपों की वृत्ति और गोप रमणियों की वृत्ति, ये कल अपने बात हुई थी ब्रज में, ये तीन लीला होती है, बाल लीला, पौगंड लीला और ये कैशोर लीला। बाल लीला में वात्सल्य भाव का उनका मुख्यत्व रहता है, पौगंड में सख्य भाव का और किशोर लीला में मधुर भाव का। इन तीनों में ही ऐश्वर्य लेश नहीं है, ये बात ध्यान में रखने की। ऐश्वर्य की बात तो सुखदेव जी हम लोगों के लिए कहते हैं कि तुम लोग कहीं भगवान के सिवा दूसरी बात समझ करके अपने मन में संदेह न कर बैठो या साधना से च्युत न हो जाओ, इसलिए सावधान करते हैं मैयाओं को, नंद बाबा को, गोप रमणियों को, उन गोप बालकों को स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं होती कि ये कोई भगवान है, ईश्वर है।